आदर्श ने राधिका को टेम्परेरली पैरालाइज किया और फिर उसे अपने घर ले गया। वहीं केशव सिंघानिया हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी में उन्हें जाते हुए देख रहा था। राधिका की हालत उन्हें ठीक नहीं लगी तो उन्होंने एक बार फिर ऋषिका से मदद मांगते हुए उसे मैसेज किया। केशव के चेहरे पर परेशानी के गहरे भाव थे। उनके पास में अरमान बैठा हुआ था। केशव को इस तरह परेशान देखकर अरमान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने धीमी आवाज में कहा, चाचू आपने ही कहा था कि मिसेस सिंघानिया और आप मरने के बाद भी नहीं मिलेंगे। वो आपसे नहीं मिलना चाहती हैं, फिर आप बार बार उनके पास क्यों चले आते हो? जो भी हुआ है उससे वो काफ़ी ब्रोकन है। आखिर उन्होंने अपनी बेटी खोई है, हमें उन्हें टाइम देना चाहिए। मुझे यही लगता है कि हमें वापस दिल्ली लौट जाना चाहिए। अरमान की बात सुनकर केशव ने उसकी तरफ गुस्से में घूर कर देखा तो अरमान ने तुरंत बात को संभालते हुए कहा, अच्छा इसे जाने देते हैं। मैंने सुना आपने कहा था कि कुछ गलत हो रहा है, क्या आप मुझे बताएंगे कि क्या गलत हो रहा है? उसने तुरंत ही अपनी भूल सुधार ली थी क्योंकि वो अपने चाचा के गुस्से को जानता था। केशव ने गहरी सांस ली और फिर सख्त लहजे में कहा, राधिका सिंघानिया कमजोर नहीं है। वो राधिका सिंघानिया नहीं, राधिका मर्चेंट है, एक ऐसी औरत जो मुश्किल परिस्थिति में भी घुटने नहीं टेकती है। उसकी बेटी को किसी ने जान से मार दिया, वो रोने वालों में नहीं बदला लेने वालों में से है। सच कहूं तो उसका मैसेज आया तो मुझे यही लगा था कि वो मुझसे कहेगी कि मैं उसकी बेटी के कातिल को ढूंढूं और उसे मौत से भी बदतर सजा दूं। मदद मांगने के बाद वो मुझे इस तरह जाने का नहीं कह सकती है। राधिका भले ही बीमार रहती हो लेकिन वो मानसिक तौर पर काफी मजबूत थी। कोई भी इंसान जल्दी से अपना स्वभाव नहीं बदलता है, बस इसी से केशव ने अंदाजा लगाया था। पूरी बात सुनने के बाद अरमान बोला, तो आप जाकर डायरेक्टली उनसे बात कर लीजिए ना। केशव ने जवाब देने के बजाय एक बार फिर उसकी तरफ गुस्से में घूर कर देखा तो अरमान ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको उनके गुस्से से डर लगता है? आपको तो किसी चीज से डर नहीं लगता, फिर आप मिसेस सिंघानिया के गुस्से से कैसे डर सकते हैं? केशव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने मन में बोला, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि अगर मैंने राधिका की मर्जी के खिलाफ कुछ भी किया तो वो गुस्सा नहीं बल्कि मुझसे नफरत करने लगेगी। दूर जाने का वादा उसने लिया था, मजबूरी में मुझे निभाना पड़ा। केशव ने फिर अपना मोबाइल चेक किया तो इशिका की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। इशिका की तरफ से जवाब नहीं आने पर केशव ने तरुण को मैसेज भेजा। इशिका के साथ साथ उन्होंने तरुण का भी नंबर ले लिया था। तुम लोग कहाँ रुके हो? केशव ने मैसेज में पूछा। सर हम फोर सीजन्स होटल में रुके हैं, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? तरुण ने तुरंत जवाब दिया। कुछ नहीं, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज रात हम साथ में डिनर करेंगे, केशव ने आगे लिखा। इशिका से मिलने का उसे यही रास्ता नजर आया था। तरुण उनके इस मैसेज से काफी खुश हो गया था। ये उसके पास अच्छा मौका था जब वो केशव के सहारे बिजनेस की दुनिया में कुछ कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ इशिका इस वक्त दिशांक के साथ थी। दिशांक ने उसका काम कर दिया था। उसने इशिका को मास्क और एक वॉइस चेंजिंग डिवाइस देते हुए कहा, ऐसी चीज हासिल करना बहुत मुश्किल है। आपको पता है मैं ब्लैक मार्केट से ये बनवा कर लेकर आया हूँ। अक्सर ऐसी चीजें स्पाई वगैरह यूज करते हैं। क्या आपके पास उसकी आवाज़ है ताकि हम इस वॉइस चेंजिंग डिवाइस में सेटिंग कर सकें? मेरे पास उसका मोबाइल है तो उसमें हमें वॉइस रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इशिका ने जवाब दिया और फिर ईशानी का मोबाइल दिशांक को दे दिया था। वो उसे मास्क को देखने लगी जो हूबहू ईशानी के हिसाब से बनाया गया था। तुमने अच्छा काम किया है, अपने कातिलों तक पहुंचने के लिए मुझे ईशानी की जगह लेनी ही होगी, इशिका ने धीरे से कहा। वो सब तो ठीक है लेकिन आप दुनिया के सामने कब आने वाली हैं? हमारे बहुत से प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़े हैं, लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि डॉक्टर मर्चेंट जिंदा है, दिशांक ने इशिका की तरफ देखकर पूछा। जब तक अपने कातिलों का पता नहीं लगा लेती तब तक मेरा छुपकर रहना ही सही है, इशिका ने जवाब दिया। इशिका के चेहरे पर इस वक्त परेशानी के भाव थे। उसकी जान पर बहुत बड़ा खतरा था और उस खतरे के बारे में सिर्फ ईशानी जानती थी। ईशानी की जगह लेना मतलब अभिमन्यु से दूर होना था। ये बात इशिका को मन ही मन परेशान कर रही थी। इशिका ने गहरी सांस ली और खुद को सख्त करके कहा, मुझे खुद को एक बड़ी जंग के लिए तैयार करना होगा। ऐसा करो, मुझे फोर सीजन्स होटल छोड़ दो, हम वहीं पर रुके हुए हैं। दिशांक ने उसकी बात पर सिर हिलाया और उसे उसी होटल में छोड़ दिया था। इशिका जैसे ही तरुण की फैमिली के पास पहुंची तो उसने देखा कि माया रूही को तैयार कर रही थी। इशिका को देखते ही माया एक्साइटेड होकर बोली, चलो अब जाकर तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। अब तरुण ने तुम्हें सबके सामने अपनी पत्नी बताया है तो थोड़ी देर ड्रामा और कर लेना, हम डिनर के लिए जा रहे हैं। डिनर? कैसा डिनर? इशिका ने हैरानी से पूछा। तरुण और उसकी फैमिली यहाँ किसी को जानती नहीं थी, फिर वो किस डिनर के लिए इतना तैयार हो रही थी? तरुण ने इशिका की बात का जवाब देते हुए कहा, तुम्हें पता है हमें डिनर पर मिस्टर केशव सिंघानिया ने बुलाया है, वो दिल्ली के पांच बड़े फैमिलीज में से एक बड़ी फैमिली के हेड हैं। मुझे नहीं पता था मेरा यहाँ आना इतना फायदेमंद रहेगा। आज जब मिसेज राजवंश की बॉडी को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था तब मैं उनसे मिला था और हम दोस्त बन गए हैं, माया ने उसके पास आकर खुशी जताते हुए कहा। मुझे तुम पर पूरा यकीन है बेटा, एक दिन तुम बहुत आगे तक जाओगे। केशव सिंघानिया का नाम सुनकर ऋषिका चौंक गई थी। पहले केशव सिंघानिया अक्सर ऋषिका से मिलने की कोशिश करते थे लेकिन ऋषिका मना कर दिया करती थी, लेकिन अब जब वो दुनिया के लिए मरी हुई साबित हो चुकी थी तब उसे केशव सिंघानिया से मिलने का मौका मिल रहा था। हालांकि वो इस बात से अभी भी अनजान थी कि उसके हैंडसम अंकल ही मिस्टर केशव सिंघानिया है। ऋषिका उनकी तरफ खड़ी चुपचाप देख रही थी।
तभी तरुण ने कहा, अरे तुम क्या सोच रही हो, जल्दी से तैयार हो जाओ प्लीज, वहां अच्छे से पेश आना। तुम अभी नहीं जानती हो मुझे, मैं बहुत काबिल हूँ और देखना एक दिन अपनी काबिलियत को सबके सामने साबित करूंगा। इशिका ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया था। वो तरुण के चेहरे की तरफ देख रही थी। वो दिखने में काफी इंटेलिजेंट नजर आता था और लुक्स भी अच्छे थे। शायद यही वजह रही होगी कि ईशानी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी। इशिका ने अपने लिए एक ड्रेस निकाली और बाथरूम में चली गई। उसने मन ही मन कहा, अब असली कातिल तक पहुंचना है तो इन्हें तो झेलना ही होगा। इशिका बनकर इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो न जाने ईशानी बनने के बाद की मेरी नाक में कितना दम करेंगे। इशिका ने तुरंत ड्रेस चेंज की और अपने चेहरे पर मेकअप कर लिया था। हालांकि वो अपने चेहरे को पूरी तरह छुपाने में कामयाब नहीं हो रही थी, लेकिन काफी हद तक उसकी फेशियल फीचर बदल गई थी। तैयार होने के बाद इशिका तरुण के साथ गाड़ी में थी। उसने देखा तरुण ने जीपीएस में वही लोकेशन शेयर की थी जहां इशिका काम करती थी और आखिरी बार मिस्टर केशव सिंघानिया से मिली थी। लोकेशन सेट करने के बाद तरुण ने माया से कहा, जानती है माँ, ये रेस्टोरेंट यहाँ का सबसे बड़ा प्राइवेट रेस्टोरेंट है, यहाँ बिना रिजर्वेशन के आप नहीं जा सकते हैं। मिसेज राजवंश यहाँ पर काम करती थी और सुना है कि उन्होंने इस रेस्टोरेंट के महान शेफ के साथ काम किया था। तरुण की बातों से साफ था कि वो आज रात के डिनर के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड था।
मुझे तो पहले ही पता था मेरा बेटा बहुत कुछ कर सकता है। तुमने अपनी जिंदगी में काफी अच्छे काम किए हैं, सिवाय उस ईशानी के साथ शादी करने के अलावा। पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई। वो जरूर इसलिए यहाँ से भाग कर गई है क्योंकि हमने उसकी कंपनी को तुम्हारे नाम करने के लिए कहा था। कितनी लालची निकली ना वो। माया अभी भी ईशानी को कोस रही थी। ईशानी के पास एक छोटी सी कंपनी थी। इशिका ने दिशांक के जरिए ईशानी के बारे में सब पता लगा लिया था। उसने अपने मन में कहा, अब जब अपनी बहन की जगह लेने का फैसला कर ही लिया है तो सबसे पहले तुम लोगों ने उसका जो भी छीना है वो उसके नाम पर वापस लेकर आऊंगी। जल्द ही वो लोग रेस्टोरेंट पहुंच चुके थे। बाहर निकलने से पहले माया ने इशिका की तरफ देखकर सख्ती से कहा, देखो तुम जो भी हो, फिलहाल के लिए तुम इस बच्चे की माँ हो। इस बच्ची ने अगर कुछ भी किया तो इसकी सजा मैं तुम दोनों को दूंगी। वो आदमी बहुत अमीर है तो उसके सामने सलीके से पेश आना और इस छोटी लड़की का ध्यान रखना। बोलते हुए माया ने रूही की तरफ देखा तो रूही इशिका से चिपक गई थी। अगर इशिका को उनके साथ नहीं रहना होता तो वो अब तक उनकी बदतमीजियों के लिए उनका मुंह तोड़ चुकी होती, लेकिन फिलहाल उसके पास उनकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। गाड़ी पार्क करते ही तरुण ने माया से कहा, ठीक है माँ, उसे डांटना बंद कीजिए। बोलते हुए तरुण ने इशिका की तरफ देखा और कहा, तुम अपना मास्क पहन लो। कल को मेरी पत्नी ईशानी वापस आई और मुझे मिस्टर सिंघानिया से वापस मिलना हुआ तो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बाल भी थोड़े माथे पर फैला लो ताकि वो किसी भी तरह तुम्हें पहचान ना पाए। इशिका ने बिना किसी बहस के तरुण की बात मान ली थी क्योंकि इसी में उसका फायदा था। वो लोग गाड़ी से बाहर निकले। उतने में एक गार्ड उनके पास आया और बोला, आप मेरे पीछे आइए, सिंघानिया साहब के गेस्ट हैं ना आप, उन्होंने मुझे आपको लाने के लिए कहा था। तरुण ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसके बाद वो सभी गार्ड के पीछे पीछे जाने लगे। गार्ड ने उन्हें केशव सिंघानिया की टेबल पर छोड़ दिया था। माया तो उस रेस्टोरेंट की भव्यता देखकर ही पागल हो गई थी। इतना शानदार रेस्टोरेंट उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। जैसे ही वो लोग केशव सिंघानिया की टेबल पर पहुंचे, इशिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और अचानक उसके मुंह से निकला, हैंडसम अंकल। उसके मुंह से हैंडसम अंकल सुनकर केशव ने तुरंत इशिका की तरफ देखा। तरुण ने इशिका को आंखें दिखाई और बात को संभालते हुए केशव से कहा, मेरी पत्नी पहली बार इस तरह की जगह पर आई है, प्लीज आप उसके बर्ताव को माइंड मत कीजिएगा। केशव ने इशिका के चेहरे की तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन मास्क की वजह से वो उसे देख नहीं पा रहे थे। पिछली बार भी उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। केशव ने कुछ नहीं कहा और उन्हें बैठने का इशारा किया। केशव डायरेक्टली इशिका से राधिका के बारे में बात नहीं कर सकते थे। वहीं इशिका अभी भी इस बात से हैरान थी कि उसके हैंडसम अंकल ही केशव सिंघानिया है। उसने मन ही मन कहा, आखिरी बार में इनसे मिलने वाली थी और मैंने अपनी जगह माँ को भेज दिया था। मेरी वजह से माँ मुसीबत में आ गई होगी क्योंकि वो उनसे मिलना नहीं चाहती थी। मुझे पहले पता क्यों नहीं चला कि यही केशव सिंघानिया है। इशिका अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी केशव ने कहा, मैंने तुम्हें मैसेज किए थे, तुमने उसका जवाब क्यों नहीं दिया? मैंने चेक नहीं किया था, इशिका ने आवाज़ बदलकर शांत लहजे में कहा। फिर उसने अपना मोबाइल चेक किया तो उसमें सच में केशव के मैसेज आए हुए थे। वहीं केशव को इशिका से बात करते देखकर तरुण ने हल्का हैरानी जताते हुए पूछा, क्या आप मेरी वाइफ को पहले से जानते हैं? नहीं, आज हम राजवंश विला में मिले थे और हमारी जान पहचान हो गई थी, तभी मैंने तुमसे इसका नंबर लिया था, केशव ने सफाई देते हुए कहा। उन्होंने एक नज़र इशिका की तरफ देखा। उन्हें अभी भी याद था कि तरुण ने इशिका का पूरा नाम ईशानी मर्चेंट बताया था। उन्होंने कुछ पल रुककर पूछा, तुम्हें मर्चेंट सरनेम कहाँ से मिला है? मर्चेंट सरनेम उनके लिए आम नहीं था, इसलिए उन्होंने ऐसा पूछा। इशिका के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, लेकिन तभी तरुण ने जवाब देते हुए कहा, एक्चुअली ईशानी को जिसने अडॉप्ट किया था उनका सरनेम मर्चेंट था। जब ईशानी पैदा हुई थी तो किसी ने उसे डस्टबिन में फेंक दिया था। एक कपल ने उसे पाला था
उनका सरनेम मर्चेंट था, इस वजह से इसका पूरा नाम ईशानी मर्चेंट पड़ गया। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। जाते वक्त वो ईशानी के लिए एक छोटी सी कंपनी और अपना विला छोड़कर गए थे। दिल्ली में ही है कंपनी और विला। इसकी कंपनी न्यू एनर्जी पर काम करती है, ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन सोच रहे हैं कि थोड़े एम्प्लॉयज हायर करके इसे एक्सटेंड करें। तरुण हर एक बात को काफी डिटेल में बता रहा था। वो जानता था कि केशव सिंघानिया अगर उन्हें एक भी प्रोजेक्ट दिला देगा तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। वहीं इशिका को भी ईशानी के बारे में नई चीज पता चल रही थी। उसने मन ही मन कहा, ईशानी के माँ बाप ने उसे फेंक दिया था, लेकिन उसका डीएनए माँ से कैसे मैच कर रहा है? अगर वो माँ की बेटी होती तो माँ कभी उसे इस तरह नहीं फेंकती। कुछ समझ नहीं आ रहा है। ईशानी का कोई नहीं था, तभी बेचारी इस घटिया फैमिली के बीच रह रही थी। कुछ ही देर में खाना आ गया था। इशिका अभी भी मास्क में थी। खाने से पहले केशव सिंघानिया ने इशिका की तरफ देखा। अब वो खुद को पूछने से रोक नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा, तुम मिसेस सिंघानिया से मिलने के लिए गई थी ना, अब वो कैसी हैं? उन्हें अभी भी होश नहीं आया है, इशिका ने जवाब दिया। उन्हें होश आ गया है, आदर्श ने उन्हें आज ही डिस्चार्ज करवाया है, केशव ने जवाब दिया तो इशिका चौंक गई। केशव ने कुछ पल रुककर आगे कहा, उन्होंने मुझे एक मैसेज किया था कि उन्हें मेरी हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? इशिका ने जल्दी से पूछा। राधिका के होश में आने के बाद सुनकर वो बहुत बेचैन हो रही थी। मुझे नहीं पता, जब मैं हॉस्पिटल गया था तब उन्हें डिस्चार्ज के लिए ले जाया जा रहा था, केशव ने उदास होकर कहा। लेकिन उनका डिस्चार्ज कैसे हो सकता है, वो अभी बहुत कमजोर है, इशिका ने हल्के गुस्से में कहा। वो पकड़ी जा सकती थी, इसलिए उसने तुरंत खुद को काबू करके धीमी आवाज में आगे कहा, मेरे कहने का मतलब है, जब मैंने उन्हें देखा था तो वो बहुत कमजोर लग रही थी, डॉक्टर इतनी जल्दी डिस्चार्ज नहीं देते हैं। हाँ, इसीलिए थोड़ा डाउट हो रहा है। बेटा, क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम कर सकती हो? क्या तुम मिसेस सिन्हानिया से वापस मिलकर आओगी? मैं बस जानना चाहता हूँ कि वो ठीक है ना, केशव इशिका की तरफ देखकर प्लीडिंग वॉइस में कहा। इशिका किसी भी हाल में और इंतजार नहीं कर सकती थी। वो जल्दी से उठी और बोली, मैं अभी जा सकती हूँ। जाने से पहले इशिका ने तरुण की तरफ देखा। उसने तुरंत कहा, अरे तुम बिल्कुल को, मेरी इजाजत मत लो, मिस्टर सिंघानिया का काम होना ज्यादा जरूरी है। इशिका फिर एक पल के लिए भी वहां नहीं रुकी। वो जल्दी से बाहर आई, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मन ही मन कहा, मैं पूरी दुनिया के सामने मरी हुई साबित हो सकती हूँ, लेकिन मेरी माँ को किसी तकलीफ में नहीं रहने दूंगी। आखिर कर क्या रहे हो तुम आदर सिंघानिया, जो मेरी माँ को अचानक तुमने हॉस्पिटल से निकाल लिया? इस वक्त इशिका को राधिका के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। वो इसी वक्त सिंघानिया विला में राधिका के पास जा रही थी।